أحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاء اللہ تعالی سورة البقرہ آیت نمبر 168 سے 176 تک کریں گے. دیکھتے ہیں ہم تفسیر آیت نمبر 168 سے 176 تک سورة البقرہ. ہم اس سے پہلے سبق میں پڑھ چکی ہیں جہاں پہ ہماری بات ختم ہوئی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں سے شدید محبت کرتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے ان آیات کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا کہ شدید محبت صرف کس سے ہونی چاہیے، یعنی بجائے انسان دھوکہ کھائے یا کسی غلط چیز سے محبت کر کے اس کے بعد روئے، پچھتائے، غم میں مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ انسان کا سب سے زیادہ ہمدرد ہے. اس کو پتہ ہے کہ انسان نے کہیں غلط جگہ پہ دل لگا لیا نا، تو پھر بعد میں بڑا ہی غم کرے گا، بہت دکھی ہوگا، بڑا ہی روئے گا، کیونکہ جو چیزیں فانی ہیں ان کے ساتھ جس نے دل لگا لیا وہ تو پھر اس سے جدا ہو ہی جائیں گی. تو انسان کو پھر جو پچھتاوا ہوگا یا وہ چیزیں بے وفائی کریں گی اسی دنیا میں، تو جب انسان بعد میں دکھی ہو تو اس سے پہلے ہی اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اصل جگہ کہاں پہ ہے جہاں اس کا دل لگنا چاہیے، جس میں کبھی وہ پچھتائے گا نہیں. یاد رکھیں کہ اللہ سے محبت کرنے والا کبھی دکھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں پچھتائے گا. آتا ہے نا ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ جب بیمار بھی تھے تو کسی نے پوچھا کہ اے ایوب، بیماری کے دن اچھے تھے کہ اب تمہیں صحت مل گئی ہے تو یہ دن اچھے؟ تر فرمایا وہ بیماری کے دن بڑے ہی اچھے تھے. انہوں نے کہا یہ کیسا بندہ ہے جس نے ایسی بات کر دی؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا تھا مجھ سے کہ اے ایوب کیسے ہو تم، تو وہ دن بڑے پیارے تھے. تو یعنی جب انسان اللہ سے دل لگا لیتا نا، اس کو پھر یہ نہیں پرواہ رہتی کہ میں کن حالات میں ہوں. وہ جو اس کے رب کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے وہ اس کو پیارا ہوتا ہے، وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اس کی جو ساری زندگی کی جو ڈیزائرز ہیں، جو ڈریمز ہیں، جو سوچ ہے، جو عمل ہے، وہ سب بدل جاتا ہے جب اللہ کی ذات محبوب ہو جاتی ہے. وہ انسان نہیں رہتا جیسے دوسرے لوگ ہیں، ان سے بالکل مختلف ہوتا ہے، رہتا اسی دنیا میں ہے، اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے، وہ رہتا یہی ہے، اس کی سوچیں کہیں اور کی ہوتی ہیں. لوگ چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، ان کے پیچھے مرتے ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور انہی کے پیچھے اپنے دن اور رات کھپاتے ہیں، ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور اس کی سوچ بھی کچھ اور ہے، اس کی ڈریمز بھی کچھ اور ہیں، اس کی خواہشات بھی کچھ اور ہیں، وہ کسی اور ہی دنیا میں رہتا ہے. فزیکلی تو یہی ہوتا ہے، مگر دیکھیں جب انسان کی خواہشات ہی بدل جائے نا، تو اس کو فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کر رہا ہے، اس کو کیا مل گیا. اچھا اس کو یہ مل گیا، اس کو یہ پوزیشن مل گئی، اس نے یہ پا لیا، وہ اتنا آگے نکل گیا، آئے میں تو پیچھے رہ گیا. پھر ان چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے، وہ ابو ہوتا ہے ان سے. اس کی شادی اچھی جگہ ہو گئی، وہ سیریں کرنے چلا گیا، اس نے پلاٹ خرید لیے، انہوں نے اتنا بنا لیا، یہ اس کی فکریں ہی نہیں رہتی. تو اس کی تو سوچیں کچھ اور ہیں، اس نے کوئی اور فیلڈ تلاش کیا جہاں پہ وہ دوڑ لگا رہا ہے، باقی دنیا کسی اور فیلڈ میں دوڑ لگا رہی ہے، اس کو نہیں پرواہ اس کو کتنا مل گیا، کس نے کتنا پا لیا، جمع کتنا کر لیا، بینک بیلنس کس کا کتنا ہو گیا، کہ وہ اس کی یہ دوڑ ہی نہیں ہے، وہ اس ریس میں ہے ہی نہیں. वो रेस कहीं और लगा रहा, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो आपने जायजा लिया अपने दिल का, यहाँ पे किसको बिठाया गया और यहाँ पे किसको बिठाना चाहिए, कि जिस दिन ये चीज सही हो गई ना, फिर आप देखेंगे कुरान पढ़ने का मजा ही कुछ और आएगा। फिर आप देखेगा कि कुरान कैसे दिल पे असर करेगा। फिर आप देखेंगे कि अमल करना कितना आसान हो जाएगा। ये बस फिर वो चीज आएगी, समयना व अताना, हमने सुन लिया, हमने मान लिया, बस नो क्वेश्चंस आस्क्ड। फिर ये आता है, जहां पे मोहब्बतों में कमियां होने लगे ना, ये मोहब्बत अल्लाह से कहीं दूर दूर है, दूर दूर से, फिर बड़ी बातें आती हैं, फिर कुछ समझ नहीं आती, फिर कुछ लॉजिक नहीं बनती, फिर बड़ा मुश्किल है, ये आ जाता है। तो यहां से पहले करेक्शन होगी तो आगे सब ठीक होगा। प्रॉब्लम यहां पे है, हम प्रॉब्लम कहीं और ढूंढते हैं, मसला यहां है। ठीक है, तो अल्लाह ने हमें दुख से गम से बचा लिया कि एक हस्ती इस लायक है कि उससे मोहब्बत की जाए, और वाकई वो इस लायक है। तो देखें, सुभान अल्लाह, हम तो इतनी इतनी उम्रों को पहुंच गए। आप सोचें, जितनी भी हम सबकी एज है, सोचें हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि हमने किससे मोहब्बत शदीद तरीन करनी है, वो भी हमें कुरान सिखाता है। अभी जो लोग कुरान की तरफ नहीं आते, वो कहते हैं हमें तो सब कुछ पता है। हाँ, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि शदीद तरीन मोहब्बत किससे करनी है, फिर क्या और पता होगा तुम्हें। ये भी एजुकेशन कुरान दे रहा है कि देखो इन चीजों में ना दिल लगाओ, वरना रोगे पछताओगे। अल्लाह से मोहब्बत करो, खुश रहोगे हमेशा। दुनिया दुखी भी होगी ना, आपका दिल खुश रहेगा। जैसे मैंने आपको इमाम इब्ने तैमिया की मिसाल दी थी कि देखें कैद में जाने लगे हैं, तो कह रहे मेरे मेरी जन्नत तो मेरे दिल में, वो तो मेरे से कोई नहीं छीन सकता। अब जाने लगे जेल में तो क्या कह रहे हैं, उनको जेल की परवाह नहीं, उनकी जन्नत उनके दिल में। और जन्नत क्या है उनकी, अल्लाह की मोहब्बत, वो तो साथ साथ है, उसको कौन छीन सकता है, उसको कौन निकाल सकता। तो इस चीज को बहुत, इस आयत को बहुत, इसके ऊपर तदब्बर करने की जरूरत है, बहुत सोचने की जरूरत है। और कैसे ये मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह की बातें सुन के, अल्लाह की बातें सीख के, जिक्र की मजलिसों में बैठ के, नेक लोगों की सोहबतों में बैठ के, और वो चीजें, तमाम चीजें जो अल्लाह ताला से मोहब्बत में आपको बढ़ाती हूँ, वो करके अल्लाह के रास्ते में दे के, इससे भी अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती। और उन लोगों की बातें सुन के जो अल्लाह से मोहब्बत करते थे, उससे भी अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती। फिर अल्लाह के अस्माए हुस्ना में गौर व फिक्र करके, उससे भी अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती। और फिर आपको कहा था मैंने कि ये आयत जो है ना, जिसमें अल्लाह ने अपनी निशानियां बताई, आयत 164, ये बहुत गौर व फिक्र करने वाली आयत है। इससे भी अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है और बढ़ती है कि देखो मेरे रब ने मेरे लिए कितनी नेमतें की। मैं देखे, इंसान उससे मोहब्बत करता है जो उसको बहुत कुछ देता है। आपको भी वो बचपन में वो अंकल और आंटी बहुत अच्छे लगते हैं जो तोहफे लेकर आते थे, जो गिफ्ट्स लाते थे ना? तो अल्लाह तला ने तो इतने तोहफे दिए हैं हमें। जब इंसान इस चीज को रियलाइज करता है, तो खुद ब खुद उसके अंदर मोहब्बत डेवलप होती है। फिर बताया गया कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं और दिल लगा लिए, वो कहीं औरों के पीछे अंधा धुंध चल रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं। उनका अंजाम कयामत के दिन क्या होगा, इन्होंने अल्लाह को महबूब बनाने की बजाय किसी और को महबूब बना लिया। अल्लाह ताला ने हमें कयामत के दिन का नक्शा दिखाया, उनके आमाल क्या बन जाएंगे, उनके लिए हसरतें, यानी उनके आमाल, उनके जो काम है ना, वो अब उसका नतीजा क्या है, बजाय उसका नतीजा कोई निकलता कि कोई उनको जन्नत मिलती, उनको क्या मिल रहा है अपने आमाल की वजह से, हसरत हसरत, और उनकी हसरतें बढ़ती ही जाएंगी। आए क्यों ऐसा किया हमने, अल्लाह ताला हमें इन हसरतों से बचाना चाहता है, इसलिए हमें वहां की सैर एक दफा करा दी कि ये देख लो ये क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए सुभान अल्लाह, कुरान पाक में ना बड़ा ही ये प्यारा स्लूप है कि अल्लाह ताला हमें हशर के मैदान में लेके जाते हैं, फिर वापस दुनिया में लेकर आते हैं, ताकि इंसान, जैसे एक आप किसी मूवी में देखते हैं कि एक सीन कहीं पुराना दिखाया जाता है, फिर अब इस टाइम में आ जाते हैं, मतलब पुरानी सदियों पहले की कोई चीज दिखाई जाती है, फिर उसके बाद इस टाइम में लाया जाता है, तो एक वहां का सीन दिखाया गया, फिर अब यहां पे लाया गया, ताकि इंसान उस जो वो सीन दिखाया था ना, वहां पे जो नाकामी थी उससे आज अपने आप को बचा ले, क्योंकि दुनिया मजरातुल आखिर, दुनिया जो है ना आखिरत की खेती है, जो यहाँ पे बोओगे ना वही वहां पे काटोगे, ठीक है। तो अब अल्लाह ताला जो वहां दिखाते हैं सीन, और आप इसको वापस पीछे, वैसे इंसान वहां से कभी नहीं आ सकेगा वापस, लेकिन अभी टाइम है, वहां का सीन ऐसे दिखाया जैसे आपकी आंखों के सामने आ जाए कि वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, उनके दिल की कैफियत क्या है, उनको हसरतें हो रही हैं, वो पछता रहे हैं, वो बोल क्या रहे हैं, उनके डायलॉग भी सुना दिए हमें, अभी हम पहुंचे नहीं है वहां पे। कितनी बड़ी बात है, ये कोई आपको दुनिया का इल्म बता सकता है कि पता नहीं कब, जब भी कयामत आएगी, वो एक जहान होगा, वहां पे कौन क्या बोलेगा, मुझे बता दे कौन सी साइंस, कौन सी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कौन सा मैथमेटिक्स, कौन सा फलसफा आपको ये बात बता सकता है, कोई नहीं बता सकता। कि एक एक डायलॉग हमें यहाँ पे बता दिया गया कि वो कहेंगे लव अन्न लना करतन फनतबर्रा मिन्हु कमा तबर्रा मिन्हु, ये उनका डायलॉग है जो अल्लाह ने आज सुना दिया मुझे और आपको, तुम ना इस चीज में फंस जाना, ठीक है। आप इसके बाद अल्लाह ताला हमें दुनिया में लेकर आए हैं, और यहाँ पे एक ऐसी चीज की तरफ हमें तवज्जो दिलाई है जो लीड करती है इस अंजाम तक, ठीक है। ऐसी कोई चीज है जिसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है, जिसका ख्याल ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उससे अमल वजूद में आते हैं, उससे उसके ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे आमाल, और वो क्या चीज है, वो चीज है जो हमारे अंदर जाती है, यानी हमारा खाना पीना, इसके ऊपर हमारी आमाल, हमारे अखलाक, हमारी सोच, हमारी तबीयतें, हम जिस किस्म की जो एनर्जी हमारे अंदर आती है, या जिस जिस किस्म की नेचर हमारी बनती है, आदत बनती है, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि हम खाते क्या, ठीक है। आज तो साइंस बताती है ना कि ये फूड खाओगे तो हाइपर हो जाता है, ये फूड खाते हैं तो इंसान सुस्त हो जाता है, ये फूड खाते हैं तो मोटापा आ जाता है, अब तो ये भी बताते हैं ना ये सारी बातें, तो ये तो कुरान ने पहले ही बता दी। देखें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आयत नंबर 168 में, अल्लाह ताला जो हम पढ़े इसके ऊपर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाना, या अय्युहन्नास, ए लोगो, कुलू, खाओ, कुलू है ना, कुल होता तो एक के लिए होता, कुलू सारे के सारे, सब इंसानों को क्या कहा जाता है, खाओ क्या, मिम्मा फिल अर्थ, जो जमीन में उसमें से खाओ, लेकिन दो शराइत के साथ, हलालन तय्यबन, हलाल भी हो तय्यब भी हो। किसको कहा जा रहा है, आप सोचेंगे मुसलमानों को कहा जा रहा होगा कि हलाल खाओ, नहीं, यहां पे किसको कहा जा रहा है, सारी इंसानियत को। आपको क्या पता चला इससे, इससे पहले भी हम सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं, पहले पारे में, या अय्युन्नास उबुदू रब्बकुम, सारे इंसानों इबादत करो, अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया गया था ना, यहाँ पे भी या अय्युन्नास है। इससे पता चलता है कि कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये एड्रेस करता है पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी इंसानियत को, सब इंसान। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा मजहब होगा जो सारे इंसानों का हमदर्द हो, सिर्फ अपने मानने वालों का नहीं। ये नहीं कहा गया है मुसलमानों तुम सिर्फ खाया करो, बाकियों के लिए ये सब कुछ नहीं है, बाकी जाएं जहां मर्जी जो मर्जी खाएं, इनकी तुम्हें नहीं परवाह करने की जरूरत। या अय्युहन नास, नास में वो भी लोग हैं जो काफिर है, नास में वो भी लोग हैं जो मुशरिक हैं, नास में वो भी लोग हैं जो अल्लाह को मानते ही नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी भी भलाई रखी, क्योंकि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है खाना पीना, इसी से फिर आगे उनके अमल वजूद में आएंगे, उनको भी कहा गया कि तुम अच्छा ही खाओ, जो भी जमीन में तुम्हारे लिए भी है, अनास सबके लिए, यानी सबके लिए। तो हम कहते हैं ना कि हम काफिर को नहीं देंगे, मुसलमान को सिर्फ खिलाएंगे। अल्लाह ने काफिरों के लिए भी रखा है ये, जो जो कुछ जमीन में वो भी खाएं पिए, उनको भी इजाजत है। अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम मुझे मानते नहीं हो, मैंने नहीं तुम्हें खिलाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी, आपने पहले पारे के एंड में देखी थी ना, अल्लाह ताला जो सिर्फ तेरे ऊपर ईमान लाए उसको देना ये फल और ये सारा रिस्क। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, सबके लिए ये, इस दुनिया में सबके लिए, आखरत में मगर ये सबके लिए अल्लाह की नियमतें नहीं होंगी। ठीक है, तो या यो नास कुलू, खाओ, इसका मतलब है अल्लाह ताला की तरफ से खाने पीने पे कोई ममानियत नहीं है। सबसे पहली बात हमें ये पता चली, क्योंकि जब बाज दफा लोग दीन की तरफ आते हैं तो वो क्या कहते हैं, तो पता नहीं इसमें ही नेकी है कि हम ना कुछ खाएं ना कुछ पिएं, कोई अच्छा खाना हमें नहीं खाना चाहिए, बस बासी रोटी खाएं, सूखी रोटी खाएं, ये तकवा है। और हम कपड़े भी बस सिर्फ सफेद लिबास पहन के एक तरफ बैठे रहे, कोई हमने अच्छे कपड़े नहीं पहनने, कोई हमने कोई नेमतों को एंजॉय नहीं करना, ऐसा नहीं है, इसमें कोई तकवा नहीं है। कुलू खाओ, अल्लाह ताला ने कहा है, मिम्मा फिल अर्द, जो कुछ जमीन में, इजाजत दी है आपको, जो जो भी जमीन में है आपके लिए सब खाओ, लेकिन क्या शर्त रखी, हलाल और तय्यब खाना। हलाल सबसे पहली शर्त हलाल है, यानी हलाल अशिया कौन सी है वो। हलाल का लफ्ज पहले आपको बताती हूँ किससे है, हिल्लुन से है। हिल कहते हैं किसी गिरा को खोलना, और यानी इंसान के लिए कोई चीज हलाल कर दी गई ना तो गोया गिरा खोल दी गई, बल्कि हिल्लू नहीं लिखे हल्ला लिखे, हल्ला हा के ऊपर जबर डाले, यानी पाबंदी हटा दी गई उसके ऊपर से। अब ये कौन पाबंदी उठाता है, कौन बताता है कि क्या चीज हलाल है, ये अल्लाह ताला बताएगा ये कौन सी चीज हलाल है, हलाल के जुमरे में आती है। और नंबर टू, जो तय्यब है, पाकीज़ा है, पाक है, वो पाक के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, यानी पाक में ये भी है जो लजीज है, टेस्टी है, पाक में ये भी है जो आपका दिल चाहता है खाने का, आपको आपके, यानी एक चीज है ना, मिसाल के तौर पे हम जो खाना खाते हैं वो हमारा स्टेपल फूड है। अब हम किसी और जगह का, मसलन अफ्रीका में रहने वाले लोग हैं, उनका किसी और तरह का खाना होता है, हमारे दिल उसको नहीं चाहता खाने को, तो अब हमारे लिए नहीं है जरूरी कि हम वो खाएं, तो हमारी तबीयत उसकी तरफ नहीं मायल होती। फिर तय्यब में वो भी है जो जिस्म को जरर ना पहुंचाए, ठीक है, वो भी है, यानी जिस्म को नुकसान ना पहुंचाए, वो भी तय्यब है। अब आप देखें कि कई चीजें हम आज खाते हैं जो हमें पसंद भी हैं, जो लजीज भी लगती हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, वो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं, उनमें शुगर बहुत है, या उनके अंदर ऐसी फैट है, या उसके अंदर ऐसी चीजें हैं, मसलन किसी के लिए कोई चीज हो सकती है, किसी के लिए कोई हो सकती है, मसलन किसी को अगर कोई बीमारी लगी हुई हो तो उसके लिए कोई ऐसी चीज है जो उसको नहीं सूट करती, तो वो नहीं खाए वो, फिर हाँ उसके लिए वो तय्यब नहीं है। ठीक है, और हलाल चीज का तो आपको मालूम है कि जो शरीयत ने कह दी है कि ये हलाल है, याद रखिए जो चीजें शरीयत ने कह दी है ना कि वो हलाल है, वो तय्यब हैं, बेसिक्स में अपनी बुनियादी तौर पे वो तय्यब है। अनलेस ये कोई चीज, मिसाल के तौर पे आप एक चिकन है, वो हलाल है, वैसे हलाल है, लेकिन आपने उसको जिबा ही नहीं किया तो अब वो हलाल नहीं, वो तय्यब नहीं रहेगा। या एक चिकन है, वो वैसे तो हलाल है लेकिन वो गल सड़ गया है, ठीक है, तब भी वो तय्यब नहीं। ठीक है, तीसरी चीज ये कि जब आपको खाने को कहा गया ना कि कुलू मिम्मा फिल अर्द, तो इसमें सिर्फ ऐसे खाने से मतलब नहीं है, बल्कि इसमें ये भी सेकंड माना ये है, यानी तुम्हारी कमाई हलाल हो, कुलू वो खाओ जो हलाल और तय्यब हो, यानी तुमने जो कमाई की हो वो ऐसी हो जिसमें हलाल हो और तय्यब हो, यानी इंसान की कमाई के अंदर किसी का हक ना मारा गया हो, कोई लूट खसूट की कमाई ना हो, वो कमाई खाओ, यानी ये मतलब है। और इसी तरह मिलावट, इसी तरह रिश्वत, इसी तरह सूद की कमाई, इसी तरह शराब की कमाई, इसी तरह हराम चीजों को बेच के उनकी कमाई, नापाक चीजों को बेच के उनकी कमाई, झूठ बोल के जो कमाई की गई हो, किसी को चीट करके जो कमाई की गई हो, उससे कुछ जो फायदा आपको मिला हो, धोखा दे के किसी के साथ फ्रॉड करके जो कमाई की गई हो, हेरा फेरी जिसको कहते हैं वो करके कमाई की गई हो, करप्शन की कमाई की गई हो, जिसमें भी किसी के हकूक मारे गए हैं, वो कमाई सारी हराम हो गई ना। तो अब उस हराम कमाई से जो चाहे आप जबीहा चिकन ले रहे हैं, चाहे आप जिबा किया हुआ बीफ ले रहे हैं, वो सब हराम ही हो गया, वो कमाई ही हराम है, तो ये हराम हो गया। तो ना सिर्फ वो फिजिकली हलाल और तैयब होनी चाहिए, बल्कि कमाई भी हलाल और तैयब हो। ठीक है, ये बात समझ आ गई? फिजिकली खाने में कैसी हो, कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने भी इसको हलाल किया हो और पाक भी हो। आज इस बात को पढ़ के इतना शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुसलमान बनाया। क्यों? वो तो बहुत सी वजूहात है, लेकिन एक वजह ये, अल्लाह ताला ने हमें ये भी बता दिया अपने खाना पीना क्या है। क्योंकि आज कुछ कौमें जो हैं वो सांप खा रही हैं, ये इसको चूहे खा रही हैं, चमगादड़े खा रही हैं, मेंढक खा रही हैं, उनके सूप पी रही हैं, जिन चीजों से घिन आती है, कराहत आती है, वो उन चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं। तो क्या फिर शुक्र नहीं अदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें मुसलमान बनाया, हमें इसका मतलब है इंसान, तेरी तो इतनी भी अकल नहीं है कि तुझे ये पता चले खाना गया मैंने, तुझे तो इतनी भी सेंस नहीं। हम बड़े अपने आप को अकलमंद समझते ना, हमें क्या शरीयत की जरूरत है, हमें क्या कुरान के, हम खुद ही इतने अकलमंद हैं, हमें नहीं अपना पता चलता। अल्लाह ने जब अकल दे दी तो फिर क्या, तुम्हारी अकलों का तो ये हाल है। ये अभी ये बहुत बड़े सिविलाइज्ड कौमें हैं, बहुत तरक्की याफ्ता कौमें हैं, लेकिन ये तक नहीं पता कि खाना क्या है। अल्लाह अकबर। और जो कौमें मुर्दार खाती हैं, ये तक नहीं पता कि मुर्दार है ये, हम इसको ना खाएं। कितनी नापाक चीजें हैं जिनको खाया जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, इस चीज के ऊपर शुक्र अदा कीजिए आज, वरना कहीं उन्हीं के घरों में वैसे ही पैदा हो जाते तो आज हम भी वही छिपकलियां और मेंढक खा रहे होते, जिनको ये सेंस नहीं है कि क्या खाना है। अल्लाह ताला ने तो पूरी इंसानियत की भलाई करी कि सारी इंसानियत को बता दी ये तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि जो चीज अल्लाह ताला हलाल कर देते हैं ना, जिस चीज को हलाल किया है, याद रखिए उसके अंदर इंसान के लिए नुकसान नहीं है। ये जो आज कहते हैं ना, आप ये रेड मीट ना खाएं, फलाना ना खाएं, ये ना खाएं, आपको पता है ये क्या बात है? जब हम ओवर कर देते हैं किसी चीज को तो फिर उसमें नुकसान होता है। आज कहते हैं वो चिकन ना खाएं जो ब्रॉयलर है, ये ना खाएं, वो भी क्या है, अल्लाह ने थोड़ी ऐसा पैदा किया है, और तो हमने खुद इस तरह के उनको इंजेक्शन दे दे के और उनको कैसी फीड खिलाते हैं जिससे वो इतने बड़े हो जाते हैं और वो नुकसानदेह बनते हैं। तो ये इंसानों के कसूर हैं जिनकी वजह से वो चीजें नुकसानदेह बन गई, अल्लाह ने नहीं नुकसानदेह बनाई कोई चीज। आज नमक और चीनी को कहते हैं ये व्हाइट पॉइजन है, अल्लाह ने नहीं ये नुकसानदेह बनाई, ये इंसानों ने खुद बनाई हुई है, इंसानों ने खुद ऐसी चीजें इजाद की हैं, चीजों को ब्लीच किया है, और आज क्या कह रहे हैं, अफसोस होता है, आज कह रहे हैं बेसिक्स पे जाओ वो ही तुम्हारे लिए ठीक है। आटे को ब्लीच कर दिया, उसको चावल को ब्लीच कर दिया उसको, आज कह रहे हैं ब्राउन राइस खाओ, आटे को कह रहे हैं होल व्हीट खाओ, सब होल व्हीट के, जो तुमने ये बना के रख दिया तो जहर बना दिया ना इंसानियत के लिए। जिस तरह से गाय और उनको परवरिश की जाती है, जैसे उनको कभी अगर आपने ये चीज देखी हो, मैंने ये देखी थी इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री, कि किस तरह से गाय वगैरह को रखा जाता है, काफ्स को रखा जाता है छोटे से पिंजरे टाइप जगह के अंदर, वहीं पे वो अपनी लीद करते हैं, वहीं पे वो खड़े रहते हैं, वहीं पे वो ग्रो करते हैं, टीके लगा लगा के उनको बड़ा कर देते हैं, और फिर उनको फिर कहते हैं बीफ ना खाओ। अब आप देखें खुद इंसान ने अपनी बीमारियों के काम किए, फिर फिश, सब बहुत अच्छी फिश, बहुत अच्छी। अब वो कहते हैं फिश भी ना खाओ, क्यों? इसलिए कि फार्म्स में उसको रेज कर रहे हैं और वहां पे उनको वो चीज खिला रहे हैं जो कि उनके लिए सही नहीं। आज तक ये जो बीमारियां पैदा हुई किन वजह से पैदा हो रही, बाकी वो अलग बात है कि क्या वो किसी के ऊपर वबाल है उनके अमाल का या क्या है, वो एक अलग बात। लेकिन अगर पहले देखा जाए सार्स बीमारी आई थी किस वजह से पैदा हुई, आज देखें ये जो कोरोना वायरस है किस वजह से है, इसलिए कि हलाल तैयब नहीं खाते। ऐसा ही है ना, जब अल्लाह ताला के अहकामात को तोड़ोगे तो ये नतीजा निकलेगा। पूरी इंसानियत को कह दिया गया, क्योंकि पूरी इंसानियत की फलाह इसी में है। तुम बच जाओगे अगर ये काम करोगे तो। तुम नहीं मानते अल्लाह को, नहीं मानते ना मानो, लेकिन ये काम तो करो। इसमें आज सारी दुनिया परेशान है कि क्या करें इसका, लेकिन देखो इस एक आयत पे अमल करने से इन सब चीजों से बच सकते थे। एड्स, एड्स क्यों होती है सबको पता है, वो भी हराम में मुंह मारने से होती है, हराम काम करने से। जब एक इंसान निकाह के बंधन में नहीं बनता लेकिन बस अपने आप को आजाद छोड़ देता है और जगह जगह जाके बुराई का काम करता है, बेहयाई करता है, अब वो देखें वो भी हराम में पड़ने से हुआ ना। तो अल्लाह ताला के अहकामात में दुनिया की भी भलाई है इंसान की, आखरत की तो है ही है, दुनिया में भी तुम बच जाओगे बड़ी मुसीबतों से अगर तुम अल्लाह के अहकामात पे आओगे। तो ये कुरान पूरी दुनिया के लिए भलाई का पैगाम देता है। अब भुगत रहे हैं ना दुनिया वाले, अब परेशान है, अब भागे फिर रहे हैं, क्या करें इसका। लेकिन देखो ये एक आयत ने बता दिया, वो हमें खुद नहीं इन आयतों का पता, उनको हमने क्या बताना है कि तुम्हारे लिए भी यही पैगाम है, हलाल और तय्यब की तरफ आओ। आज देखें ये सिर्फ एक एक आपको मिसाल देती हूँ, आज इंसानों ने अपने लिए कैसा जहर कैसे कैसे अपने लिए खुद इजाद किए हैं। हाई फ्रक्टोज जो कॉर्न सिरप है, आपकी हर चीजों में ये सस्ता है और ये बहुत ज्यादा मीठा है शुगर के भी मुकाबले में। शुगर भी खुद ही बनाई हुई है लेकिन ये उससे भी ज्यादा सस्ता और उससे भी ज्यादा मीठा है। आपके सीरियल्स में, आपके जितने ये सोडाज हैं उनके अंदर, आपकी कैंडी बार्स, आपके जूसेस, आपकी ब्रेड्स, आपके ये फ्रोजन फूड, आपके सीरियल, केचप्स, जैम, जेली, सब में। और आपको पता है ये क्या करता है? मोटापा इससे है, डायबिटीज इससे है, हाई ब्लड प्रेशर इससे है, हार्ट डिजीज इससे है, वो कहते हैं कैंसर भी इससे कॉज हो रहा है। और एक बहुत बड़ी बात जो आपको बताना चाहते हैं उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, मगर आप लोग खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, आदमियों के अंदर जो नामर्दगी है वो इसी वजह से पैदा होती है। और ये आज इतना बड़ा मसला बन चुका है, इसको पूरे यूरोप ने बैन किया हुआ है लेकिन यहाँ पे ये अलाउड है। आप अपने घरों में देखें चीजों में कितना कितना डाला हुआ है, हम शौक से खाते हैं। तो हम, अल्लाह ने कोई चीज ऐसी नहीं पैदा की जमीन के अंदर जो ऐसी नुकसानदेह हो। जितनी भी हलाल और तैयब चीजें हैं सब इंसान के लिए फायदेमंद, ये इंसानों ने खुद बनाई है। अल्लाह ताला ने तो नेचुरल शुगर के इंतजाम किए हैं फ्रूट्स की सूरत के अंदर और कितनी चीजों में, लेकिन इंसान ने खुद बनाए ना अपने लिए। आपने, आपको मारने के लिए, अपनी सेहत की खराबी के लिए खुद इंतजाम किए, तो ये फिर जो हम आज भुगत रहे हैं बीमारियां, ये हमारे अपने हाथों की कमाई का नतीजा है। क्यों हम कहते हैं कि पहले जमाने में तो कभी सुनने में नहीं आया था, आज इतना सुनने में आ रहा, क्यों हम कहते हैं? इसलिए कि पहले जमाने में ये इस तरह की चीजें नहीं थी इजाद। आज हमारी कोई पार्टी हमारे सोडास के बगैर नहीं होती पूरी, बल्कि बहुत शौक से दिया जाता है, कोक और पेप्सी को प्रमोट किया जाता है कि ना, और हम खुद जानते हैं चीजों के नुकसान, फिर उसके बाद हम वही करते हैं, वही खाते पीते हैं। जितने प्रिजर्वेटिव्स आप देख लें, प्रिजर्वेटिव सिर्फ बीमारियां ही हैं, हम कितनी प्रिजर्वेटिव्स वाली चीजें हमारे घरों में। तो नेचुरल से जब हम हट गए तो फिर ये हुआ। तो तैयब के अंदर वो भी सारी चीजें हैं जो हेल्दी हैं और जिसके अंदर कोई इंसान की सेहत का नुकसान नहीं हो। अल्लाह ताला ने कितनी हमारे लिए खैरख्वाही की है ये मैसेज देके कि इनमें से खाओ, ना कि ऊट पटांग चीजें ऐसी खा के अपनी सेहत बर्बाद करके उसके बाद फिर हम रोते। तो हलाल खाना इतना ज्यादा जरूरी है, चाहे इससे फायदा क्या होता है, ये डायरेक्ट असर करता है इंसान के अमल पे। याद रखें, चाहे वो हलाल कमाई है उससे भी असर आता है, चाहे वो हलाल फूड है फूड की सूरत में, चाहे वो गोश्त है या जिस किस्म का भी खाना है, वो भी सारा हलाल। और अब हमारे लिए आसानी इस तरह है कि हम सबके इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हैं किस में क्या है। अब ये हमारे लिए तय्यब भी है कि नहीं, हलाल तो सारी चीजें हैं वो तो हम देखते हैं, तय्यब है कि नहीं ये भी देख सकते हैं। तो अब देखें, जो कमाई है वो भी हलाल हो, इसलिए कि जब इंसान की कमाई हलाल नहीं होती, तो एक हदीस आपको इस सिलसिले में बताती हूँ, उससे आपको काफी अंदाजा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत तिलावत फरमाई थी ना, तो हजरत साद बिन अबी वक्कास ने खड़े होकर कहा, या रसूल्ला मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबु दावात बना दे। मुस्तजाबु दावात कौन होता है? जिसकी दुआएं कबूल होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ऐ साद पाक चीजें और हलाल लुकमा खाते रहो, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाता रहेगा। यानी इंसान अगर हलाल खाएगा तो दुआएं कबूल होंगी, हलाल नहीं है तो दुआओं की कबूलियत नहीं होगी। बल्कि एक जगह पे आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस अल्लाह की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, हराम का लुकमा जो इंसान अपने पेट में डालता है उसकी नहुसत की वजह से 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती। जो गोश्त पोस्त हराम से पला है वो जहन्नमी है। अब ये चाहे हराम कमाई है, चाहे हराम इंग्रेडिएंट है। हम चीजें उठा उठा के ले आते हैं शेल्फ से और हमें पता ही नहीं होता कि ये इनमें हराम इंग्रेडिएंट है, या हम वो कमाइयां खा रहे होते हैं जो हराम होती हैं। अब चाहे वो चीज हलाल है लेकिन अगर कमाई हराम है तो फिर क्या? इसी तरह कमाई हलाल है लेकिन अगर चीज ही हराम है तो फिर तो सारा खराब हो गया ना। तो इसलिए ये चीज देखनी कि मुझे इस दौर में हलाल खाना है और इसको ढूंढना है, ये भी एक इबादत है, क्योंकि ये इस आयत पे अमल है कि ना आज हराम वाफिर मिल रहा है बहुत जगह पे, हलाल के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है। हराम की तो चीजें भी बहुत सारी हैं, जॉब्स भी बहुत सारी हैं, बिजनेस भी बहुत सारे हैं, फूड भी बहुत किस्म की हैं शेल्फ्स पे पड़े हुए जो हराम में है। लेकिन जब इंसान ये फिक्र करता है, और ये फिक्र सिर्फ उसी को हो सकती है जो मोमिन है, जब ये इंसान फिक्र करता है ना कि नहीं अल्लाह ने ये हुक्म दिया है अब मैंने हलाल ही खाना है, तो इसका इफेक्ट होता है इंसान के ऊपर, और ये इंसान को की इबादत में आप देखेंगे बेहतरी आएगी, आपके आमाल में बेहतरी आएगी, आपकी दुआएं कबूल होने शुरू हो जाएंगी। क्योंकि एक जिस्म जो है, समझ लें ऐसे जैसे आप कोई बर्तन समझ लें, अब इस बर्तन में गंद भर देंगे तो बर्तन का ढक्कन खोलेंगे क्या आएगा? बदबू ही आएगी ना, खुशबू तो नहीं आ सकती। और ये जो हमारा खाना है ये हमारे पूरे जिस्म में दौड़ता है ना, इसी से खून बनता है। खून बनता है कि नहीं? वो हमारे कहाँ कहाँ जाता है खून? पूरे जिस्म में दौड़ता है। वो चीज जो पूरे जिस्म में दौड़ रही है अगर वो हराम से बनी होगी तो इस जिस्म से अच्छाई कहां से निकलेगी? फिर कानों को अल्लाह की बात कहाँ अच्छी लगेगी? तो उसको हराम ही अच्छा लगेगा जिसने हराम खाया होगा। फिर जुबान पे गंदी बातें ही निकलेंगी, कोई अच्छी बात तो नहीं निकल सकती क्योंकि सारा जिस्म गंदगी से भरा हुआ। फिर आंखों को क्या अच्छा लगता है? हराम देखना अच्छा लगता है उनको। कोई बहुत ऐसी चीजें तो अच्छी नहीं लगती जो अल्लाह ताला ने कही हो कि यहाँ ये यहाँ पे नजर डालो यहाँ ना डालो, वो तो नहीं उनको अच्छा लगेगा। तो इसलिए जरूरी है कि इंसान हलाल का एहतमाम करे। और एक हदीस आती है कि जब एक बंदा एक मुसाफिर है, मुसाफिर है, अब मुसाफिर की आपको पता है ना दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन एक मुसाफिर ऐसा है कि वो उसके बाल बिखरे हुए हैं, वो जिस्म पे खाक है, कपड़े खाक आलूद हो चुके हैं, और वो अल्लाह ताला से दुआएं कर रहा है, बहुत दुआएं करता है, बहुत दुआएं करता है, या अल्लाह लंबा सफर करके आया है, गिड़गिड़ा रहा है, अल्लाह को पुकार रहा है, लेकिन हदीस में है उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम, उसकी गिजा सब हराम है, फिर ऐसे में उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? समझ आए? यानी हालांकि मुसाफिर की दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन उसकी दुआ नहीं कबूल हो सकती क्योंकि उसके ये सब चीजें हराम हैं। तो फिर सोचें कि दुआओं से भी हम महरूम हो जाते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो, जब हम इस तरह से हराम कंज्यूम करेंगे। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और देखो शैतान के कदमों की पैरवी ना करना। इत्तेबा कहते हैं किसी के फुटस्टेप्स पे चलना, जैसे कोई एक मिसाल के तौर पे कोई एक रेत पे चल रहा है, उसके कदमों के निशान है ना, तो आप उसके निशानों के ऊपर अपने पांव रख रख के चलें, ये इत्तेबा होती है। तो कहा गया खुतुआत शैतान की इत्तेबा ना करना। अब यहाँ पे तो कहा जाना चाहिए था ना कि ये खाओ और देखो ये ना खाना, लेकिन कहा क्या जा रहा है, खुतुआत शैतान पे ना चलना, ये क्या बात है? इसलिए कि शैतान सबसे पहले इंसान से क्या काम कराएगा, हराम खिलवाएगा। क्योंकि जब इंसान हराम खा लेता है ना, तो फिर उसका स्टेयरिंग शैतान के हाथ में आ जाता है। जाहिर है इसकी गिजा हराम है, उसका गोश्त पोस हराम हो गया, उसकी ना दुआएं कबूल हो रही हैं, ना उसकी इबादत कबूल हो रही है, 40 दिन की तो वैसे ही नहीं नमाज कबूल हुई, तो अब क्या उसके लिए रह गया? एक ना इब्ने मरदवे की यह हदीस है कि एक हराम लुकमे से जिसे इंसान अपने पेट में डालता है, 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती, एक हराम लुकमे से। तो फिर क्या इंसान की क्या और अमल रह गया फिर उसका, दुआएं वैसे ही नहीं कबूल हो रही, तो वो तो फिर शैतान के हाथों में चला गया ना, उसके हाथों में खेलेगा फिर, जिसको अल्लाह ने छोड़ दिया। तो कहा गया उसकी खुतुवात पे ना चलना। अच्छा अब ये वला तत्तबिउ शैतान, क्यों नहीं कहा गया तुम शैतान की पैरवी ना करना, उसके कदमों पे ना चलना, ये कहा गया इसलिए कि शैतान कभी भी जंप नहीं लगवाता आपसे, याद रखिएगा ये बात, एक छोटा सा स्टेप उठवाता है, कोई बात नहीं फिर क्या हुआ, ये तो छोटी सी चीज है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है, सभी तो कर रहे हैं, ऐसा भी क्या हो गया, छोटा सा तो काम है, ये एक स्टेप उठा लिया ना, उसके बाद थोड़े दिन उसी पे खड़े रहेंगे, कुछ अरसा गुजर जाएगा फिर दूसरा स्टेप उठवाएगा। अच्छा अब यहां तक आ गए, चलो ये भी कर ही लेते हैं, फिर वो, फिर उससे तीसरा, फिर उससे चौथा, कि वो कहते हैं ना कि बुराई का एक दरवाजा जब इंसान खोलता है तो और कई दरवाजे खुल जाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई शराब खाने जाता है, पब जाता है, वहां भी शराब पीता है, अब क्या है वहां से उसको और बहुत से दरवाजे खुल जाएंगे, जिना के भी अड्डों का पता चल जाएगा, और हराम कामों के भी अड्डों का पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा कि जुआ कहाँ पे खेलते हैं, ये सब वहीं से पता चलेगा, तो मस्जिद का पता तो नहीं कोई देगा उसको वहां पे बैठे हुए, क्या ख्याल है? इसी तरह जब इंसान नेकी का एक दरवाजा खोलता है, मिसाल के तौर पे आपने एक कुरान क्लास ज्वाइन कर ली, वहां से आपको हिफ्ज का पता चला, वहां से आपको तजवीद की क्लासेस का पता चला, वहां से आपको सदका और खैरात के कई प्रोजेक्ट्स का पता चल गया, वहां पे आपको किसी और कोई नेकी के काम का पता चल जाता है, तो कितने दरवाजे खुल गए, किसी का पता चल गया, किसी का जनाजा है, किसी की बीमार पुरसी करने का ख्याल आ गया, किसी बीमार के यानी इत्तला मिल गई, तो कितने दरवाजे खुले ना। तो याद रखिए वो कभी भी इतनी लंबी जंप नहीं लगवाएगा आपसे कि वहां तक पहुंच जा बुराई में, नहीं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। आपको बरसीसा की कहानी तो पता होगी, पहले भी सुनाई भी है मैंने, बरसीसा की जो राहिब था, मॉन्क था, जिसको शैतान ने पागल बना दिया था, जिनमें मुख्तसर बता देती हूँ अभी, कि बरसीसा ना एक बड़ा ही नेक आदमी था, पुराने जमाने में इतना नेक था वो कि उसने दुनिया छोड़ के रहबानियत इख्तियार कर ली थी, अपना अकेला रहता था, अल्लाह की इबादत बहुत ज्यादा करता था। तो क्या हुआ कि एक कुछ भाई थे, उन्होंने जंग पे जाना था, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले थे, उनकी एक जवान बहन थी, उन्होंने कहा हम अपनी बहन का क्या करें, इसको कहीं छोड़ के जाएं, किधर छोड़ के जाएं? तो उन्होंने कहा ये ऐसा है कि वो राहिब इतना नेक है, इससे ज्यादा अच्छी क्या जगह हो सकती है कि हम वहां पे छोड़ जाएं चलो उसके पास रहेगी, सेफ होगी। उन्होंने उसे बात की, उसने पहले तो कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा उन्होंने कहा फिर हम किधर छोड़ें ये तो इस तरह। तो शैतान उसके पास आया और उसको कहा कि देखो तुम तो मान जाओ, क्योंकि बेचारी लड़की अगर किसी गलत हाथों में लग गई तो क्या होगा। तो उसने उनसे हामी भर ली, अच्छा ठीक है लेकिन वो जरा दूर के घर में वहां पे इसको छोड़ के जाना, मैं अपने साथ नहीं रखूंगा। उनका ठीक है, अच्छा जनाब वो वहां पे छोड़ गए अपनी बहन को। अब ये जाता था राहिब रोजाना, वहां पे खाना बाहर रख के आ जाता था और वो लड़की अंदर से निकलती खाना ले जाती थी। इस तरह अरसा गुजरता रहा, शैतान उसके पास आया, उसने कहा देखो तुम बाहर रख जाते हो, आखिर वो एक इंसान है, किसी से तो बात करनी है उसने, किसी के साथ तो बैठेगी, जो उसके भाई भी यहाँ पे नहीं है तो चार बोल उसके साथ बोलो, तो कोई हर्ज थोड़ी है इसमें। अब वो जब जाने लगा तो अब जाके उसे अलैक सलैक भी करने लगा, उसका हाल चाल भी पूछने लगा। कुछ अरसा ऐसे चलता रहा, फिर शैतान ने उससे कहा देखो तुम बाहर से आ जाते हो, अगर अंदर कुछ देर उसके दिल बहलाने के लिए बैठ जाओगे तो क्या हर्ज है, ये भी तो एक नेकी ही है, किसी के पास बैठना, किसी की दिलजोई करना। उसने कहा हाँ वाकई बात तो सही है, इसी तरह करना चाहिए। अब ये जो वसवास आते हैं ना, खुतुआत क्या होते हैं, वसवसे, शैतान के वसवसों की इत्तेबा नहीं करनी। अब वो वसवसा डालता है इंसान को, लगता है कि ये मेरा दिमाग खुद ही सोच रहा है, लेकिन ये जो बार बार आती है ना कोई चीज, वो शैतानी वसवसा होता है। अब वो जाके अंदर भी बैठने लगा, जब अंदर बैठने लगा तो कुछ अरसा उससे बातचीत होती रही, उससे कुर्बत हो गई। और फिर कुर्बत होते होते ये तो जहां पे एक मर्द और एक औरत अकेले हो तो हदीस में है कि तीसरा शैतान होता है। और उसके बाद वो काम हो गया जो नहीं होना चाहिए था और वो लड़की हामिला हो गई। अब तो उसको बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई कि ये हो क्या गया, अब तो इसके भाई आएंगे तो मेरी जान नहीं छोड़ेंगे। और उसने क्या किया, वो जो उसके बच्चा पैदा हुआ उसने उस लड़की को भी कत्ल कर दिया, उसके बच्चे को भी, और उनको दफना दिया। जब वो भाई आए तो उनको बता दिया कि उसका तो कुछ वो हो गया था, वो तो मर गई है बेचारी। वो रोते धोते चले गए, शैतान उनकी ख्वाब में आया और उनसे कहा कि वो तो ऐसा ऐसा काम इसने किया और वहां पे तुम जाओ, वहां पे वो लड़की और उसका बच्चा दफन। तो वो गए, उन्होंने वो जमीन खोदी तो वहां पे ऐसा ही था। वो तो बादशाह के पास शिकायत लेके चले गए, बादशाह के आदमियों ने आके उसको पकड़ने के लिए आ गए कि ये तो बहुत बड़ा जुर्म इसने कर दिया। जब वो उसको पकड़ के लेकर जा रहे थे तो शैतान आ गया, अब एक आदमी की शक्ल में आया और उसको कहा देखो मैंने ही तुम्हें आज तक यहां तक पहुंचाया है, अब मैं ही तुम्हें सिर्फ इससे निकाल सकता हूं। उसने कहा मेरी तो बड़ी बदनामी हो गई, मेरा तो क्या मेरा बनेगा, खुदा के लिए मुझे निकालो इसमें से। उसने कहा उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी फिर निकल सकते हो तुम। ने कहा बताओ, जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। उसने कहा मुझे सजदा कर दो तब मैं तुम्हें इससे निकालूंगा। उसने उसको सजदा कर दिया और उसके बाद उसको वो उन्होंने कत्ल कर दिया कत्ल के जुर्म में। तो उसका क्या अमल रह गया, उसने कत्ल भी किया, जिना भी किया और शिर्क भी कर दिया। तो शैतान कैसे, ये हदीस में है ये सारी बात, ये किस्सा, तो शैतान कैसे इंसान को वरगलाता है, कैसे वो एक एक स्टेप आगे लेकर जाता है। एक दिन में नहीं कुछ करा देता कि तुमने ये करना है, अब उसको एक दिन में कह दिया जाता कि मुझे सजदा करो, करता है वो कोई, उसको वो कहता कत्ल करो करना था उसने, कोई जिना करो करना था कोई नहीं। मगर देखें आप ये जो स्टेप बाय स्टेप चीज कराता है ना, तो इंसान झांसे में आ जाता, कोई बात नहीं इतना सही तो काम, कोई बात नहीं फिर क्या हो गया, इतनी सी तो चीज है, और हमने भी कर लिया तो क्या, मैं उतना तो नहीं ना कर रही जैसे लोग करते हैं। ये शैतानी फंदे हैं और इससे कैसे बचा जाता है, इंसान जैसे उस बंदे ने अपने आप को तसल्लियां दी ना, अपने आप से इंसान झूठ ना बोले, अपनी नीयत को साफ करे। ये नीयतों के अंदर जो खोट होता है ना, बड़ा छुपा हुआ होता है, ये पता नहीं चलता। इंसान कहता है कि मैं नमाज पढ़ाऊंगा, मैं नमाज पढ़ाऊंगा, ये नहीं है कि मुझे कोई इमामत कराने का वो है, बस लोग मेरी तिलावत तो सुने ना, कि मेरी तिलावत कितनी खूबसूरत है, मेरी आवाज तो पता चले लोगों को। और ये फिक्स ऐसे ही होगा कि इंसान कॉन्स्टेंटली अपने एक्शंस को वॉच करे, कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर सबसे सख्त पहरा बिठाए, बजाय लोगों को देखने के ना लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को देखेंगे मैं क्या कर रही हूं, हमारी सारी एनर्जी सारा वक्त हमारा किस में गुजरता है, लोगों की एक्टिविटीज क्या है, जरा मैं जानू तो सही। अगर इतनी सख्ती अपने साथ हम करें ना तो बहुत हमारे अंदर बेहतरी आ जाए, ये हमें अपनी परवाह भी नहीं होती, सारी दुनिया की फिक्र हमें उठ पड़ेगी है, कौन क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, किधर जा रहा है, किधर सैरें कर रहा है, किधर घूम रहा है। ये शैतान का फंदा है, इस तरह वो स्टेप बाय स्टेप कदमों की इत्तेबा ये है, इसके एक स्टेप पे कदम रखोगे फिर दूसरा स्टेप, फिर दूसरे पे कदम रखोगे फिर तीसरा स्टेप आएगा, समझ आए। ये भी एक बात है, शैतान की चालों को समझना जरूरी है, ये तो हमारा बेड़ा गर्क करने पे तैयार है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, ये तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, यानी इसकी दुश्मनी छुपी भी नहीं है, खुली दुश्मनी, खुल्लम खुल्ला दुश्मनी करता। उसने तो उस दिन कह दिया था जब अल्लाह ने उसको वहां से निकालने के लिए इसको तो मरदूद करार दे दिया था, तो इसने उस दिन ही कहा था कि मैंने नहीं छोड़ना आदम की औलाद को, मैं तो इनके दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा, आगे से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा, मैं नहीं इनको छोड़ूंगा। तो जब उसने कसम खा के अल्लाह ताला को ये बात कह दी हुई है तो अब क्या बात रह जाती है। और अल्लाह ताला ने पुराने पाक में फरमाया है इस बात को कि देखो वो तुम्हारा दुश्मन है, सूरह फातिर में इन्ना शैताना लकुम अदू फत्तखिज़ूहु अदुवा, तुम भी तो उसको दुश्मन समझो, क्योंकि हमें पता हो ना हमारा कोई दुश्मन है, हम उसे कितनी एहतियात करते हैं, किसी को पता हो कि उसकी कोई दुश्मनी कहीं शुरू हो गई है तो इतनी एहतियात कि क्या पता कहां से किस वक्त आ जाए, पीछे से हमला कर दे, क्या पता हम बाहर निकले तो, क्या पता हमारे घर में आ जाए, क्या पता रात को आ जाए, तो कितना इंसान एहतियात करता है, लेकिन शैतान से हमें कोई एहतियात ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है। बल्कि कई लोगों के सामने अगर ये बात की जाए ना कि ये शैतान के ने देखो कैसा खेले, तो कहते ना शैतान को ना इल्जाम दो, शैतान को कैसे ना इल्जाम दे, वो तो आपका खुला दुश्मन है, वो तो वो कराएगा चीजें, वसवास डालेगा, और ये जो वसवास बार बार पलट पलट के आते हैं ना कि इंसान झटकता भी है फिर आ जाता है, फिर आ जाता, नहीं नहीं उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया तुम्हें भी बस इस तरह करना चाहिए, अब ये शैतानी होते हैं। और मैं तो ये सिर्फ कहूंगी कि शैतान के वसवास से ना सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें ये जो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तोहफा दिया है ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है, यकीन जाने मैं तो अपने आप से अपने आप का कहती हूँ कि इंसान मैं तो खुद नहीं बच सकती, हमारे लिए नहीं पॉसिबल है कि हम बचें, वो तो छोड़ता ही नहीं है, वसवसे डालता है, कभी इधर से आता है कभी उधर से आता है, वाकई ऐसा है, तो सिर्फ अल्लाह की पनाह में आना इसका सलूशन है, और कोई इसका हल नहीं है, अल्लाह ताला ही हमें बचा सकता है, आखिर उस दुश्मन का आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं जिसको आप देख ही नहीं सकते। तो इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, इसी वजह से हिफाजत की दुआएं जरूरी हैं इस दुश्मन से बचने के लिए, हम इनको चाहे कुछ ना समझें, सूरह नास को कुछ ना समझें, लेकिन ये है जिसके अंदर हमारे लिए हिफाजत है, इसीलिए इसको सुबह शाम पढ़ना चाहिए माउजात को, इखलास नास फलक ये तीन सूरतें तीन तीन दफा पढ़नी चाहिए, और आयतल कुर्सी, ताकि इस शैतान मरदूद से हमारी जान बची रहे। इन्नमा यामुरुकुम, फिर अल्लाह ताला ने इसकी जो चाल है वो बताई, बेशक यानी बेशक से मैंने आपको बताया ना ये कलमा हसर है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसका काम ही यही है, क्या सिर्फ और सिर्फ ये ही करता है, क्या या अमुरुकुम के वो हुक्म देता है तुमको किस चीज का, बिसूई वल फहशाई बुराई का, और बुराई और बेहयाई, और बेहयाई भी तो बुराई ही है, फिर बेहयाई को अलग से क्यों कहा गया, इसलिए कि शैतान बुराइयों में भी इस बुराई के हुक्म देता है कि इंसान कोई बेहयाई का काम करे, बेहयाइयां उसको पसंद है। इस आप देख लेना कि जब हमारे माँ बाप आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया है तो उसने उस वक्त क्या किया था, उनके कपड़े ही तो उतरवाए थे, वो काम कराए जिससे उनके कपड़े उतर जाए, तो सबसे ज्यादा उसको शौक ना बेहयाई का, फहाशी का, और आज तो जितनी फहाशी है सहाबा कराम को भी इतना बड़ा टेस्ट फहाशी का नहीं हुआ होगा जितनी आज फहाशी का टेस्ट है। इतनी बड़ी आजमाइश है, इंसान जिधर को मुंह करे उधर फहाशी है। आप इंटरनेट खोल लो, आप अपना फोन खोल लें, आप अपने टीवी खोल लें, आप बाहर जाएं, सड़कों पे घूमें, वहां पे बिलबोर्ड्स देखें, आप मॉल में चले जाएं, आप कहीं जाएं, अपने कंट्रीज में चले जाएं या यहां पे वेस्टर्न कंट्रीज में, तो इंतहा ही है, हर तरफ फहाशी है। सहाबा के दौर में ऐसी नहीं थी, उनके ऊपर डिफरेंट तरह की आजमाइशें आई थी। आज की आजमाइश ये है कि हमारे सामने बेहयाइयों के पोस्टर, बेहयाइयों की तस्वीरें, बेहयाइयों की मौसीकी, शायरी, बेहयाइयों की बातें इतनी खुलेआम है कि इंसान जिधर को मुंह करता है उधर बेहयाई है। और शैतान का ये काम होता है कि वो, याद रखिए, हलाल ना सब कुछ हलाल है। आप देखिए, जमीन मा फिल अर्द, जो कुछ जमीन है, हराम काम चीजें आप आगे देख लेंगे, हराम की भी लिस्ट, लेकिन जाके पढ़वाएगा हराम में, उसका ये है। अभी कितनी हलाल के दरवाजे हैं आदमी के लिए, मसलन चार निकाह वो कर सकता है, और इसके अलावा खाने पीने में आप देखें कितनी हलाल है, मगर वो ले दे के ना शराब को की तरफ ही उसको लेकर जाएगा, ले दे के जिना की तरफ लेकर जाएगा। देखिए, हराम करवाता है। और दूसरा, ऐसे नहीं होता कि एक दिन में कोई हराम करा लेगा, सबसे पहले वो चीज जो होती है उसकी जो मतलब बुराई होती है ना, उसको हल्का कर देता है, इंसान को वो चीज बुरी ना लगे। अब जाहिर है, जब नेकी की आहिस्ता आहिस्ता कराहत खत्म हो जाएगी, नेकी आम हो जाती है, तब भी उसकी कराहत खत्म हो जाती है कि हर तरफ इंसान वही बुराई, सॉरी, बुराई की बुराई देखता है, तो उसकी कराहत दिल से निकाल देता है। ये इसमें क्या, ये तो कोई गलत चीज नहीं है, फिर क्या हो गया, ये तो ऐसे। आज देखिए आप, कौमे लूत का जो अमल है, इसको कितने ही मुसलमान है जो कहने शुरू हो गए कि नहीं तो इनके साथ तो हमदर्दी करनी चाहिए, आखिर ये तो एक नेचुरल, वो इस तरह ही पैदा हुए यार ऐसे। अगर वो ऐसे पैदा हुए होते और ऐसा ही अल्लाह ने उनको बनाया होता, तो फिर तो ऐसे ही है जैसे कोई हैंडीकैप्ड हो गया। तो फिर अल्लाह ताला जिस चीज का इंसान मुकल्लफ ना हो, अल्लाह उसके ऊपर नहीं पकड़ करता, यानी जिस चीज को अल्लाह ने वैसा ही बनाया, अल्लाह उसके ऊपर थोड़ी उसकी पकड़ करता, पकड़ इंसान के अपने अमल के ऊपर होती है। आज कितने ही लोग हैं जिनके अंदर से ये बुराई की कराहत ही खत्म हो गई, कौन सा हरज है, इसमें क्या हो गया। तो जब पहले बुराई की कराहत जाती है दिल से, फिर बुराई करना आसान हो जाता है। जब बुराई को इंसान समझता है कि इसमें क्या हरज है, सबसे पहले ये कलिमात आते हैं, इसमें हरज ही क्या है, इससे क्या होगा, क्यों, कुछ नहीं फर्क पड़ता इसे, ये पहले आता है। पहले इंसान, हम कौन सा कर रहे हैं, कर नहीं रहे, लेकिन इसमें हर्ज भी नहीं है जो कर रहे हैं। तो बस समझ लें कि आपने अपने लिए दरवाजा खोल दिया है। जब इंसान कहता है ना, नहीं हम कर तो नहीं रहे, कई लोग कह रहे हैं, हम खुद तो नहीं है ये वाला अमल, हम खुद तो नहीं करते और ना हम इनमें से हैं, लेकिन जो कर रहे हैं तो आप उनके पीछे क्यों पड़े। यही तो चीज है कि शैतान बुराई की कराहत निकाल देता है। कम अज कम बुराई को बुराई तो समझा करें। आप कहते हैं हमसे कुछ नहीं होता, हमारे करने से क्या होगा, हम किसी चीज को चेंज थोड़ी कर सकते। भाई, आपको कोई चेंज करने को नहीं कह रहा अगर आपके बस में नहीं है, लेकिन कम अज कम बुराई को कहो तो सही, है बुरी है चीज, आज बुराई की कराहत ही खत्म हो गई। फिर जब बुराई की कराहत खत्म हो जाती है, तो अब वो एक्सेप्टेबल हो जाती है। जब वो एक्सेप्टेबल हो जाती है, तो एक्सेप्टेबल चीज को करना में क्या मुश्किल है, फिर तो करेंगे, तो कोई थोड़ी है, कोई एतराज नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो पहला काम वो ये करता है, बुराई को हल्का दिखाता है, कोई बात नहीं है इसमें, जो उसकी बुराई बुराई नहीं लगती, फिर इंसान कर भी लेता है। आप देख लें कई चीजें इंसान शुरू के अंदर उनको सोचता है, हाय ये क्या, लेकिन पहली पहली दफा जब देखते हैं, हाय अरे ऐसा हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे, आप तो खैर नहीं, ये भी नहीं मिसाल दे सकते, क्योंकि हमारे अपने मुल्कों में ही ये सब चीजें वैसे ही देखी जाती हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं कि वो यहाँ आके देखेंगे तो। लेकिन अगर मसलन किसी जगह पे कोई रहता है, उसने कभी ऐसी चीज ना देखी हो, तो वो यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरते ही क्या सोचेगा, ये क्या लिबास है उसके, तो मतलब एकदम उसके लिए शौक होगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो एक रोज की चीज बन जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि इसमें क्या बुराई है, अच्छा ठीक है अगर पहनते हैं तो हक है इनका, पहन सकते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा खुद भी पहनने लगेंगे। तो ये चीजें इस तरह से आगे बढ़ती हैं, ये देखिए फुट स्टेप्स है ना, कभी एक दिन में नहीं होता। फहाशी भी, बेहयाई भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आंख भी जिना करती है, कान भी जिना करते हैं, जुबान भी करती है, फिर शर्मगाह तो उसकी तस्दीक करती है, एंड किस पे जाके होता है, शर्मगाह पे, उससे पहले ये सारे चैनल्स हैं, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया ला तकरबु जिना, जिना के करीब भी ना जाओ, क्यों, इसलिए कि जब आप देखिए ना कोई चीज अगर बुरी है उसके रास्ते पर चल पड़े, जो रास्ता है उसको ही बंद कर दिया गया, उसके करीब भी ना जाना, क्योंकि अगर करीब जाओगे तो उसमें पड़ जाओगे, करीब भी नहीं जाना, कई चीजों का इस तरह से कह दिया। तो वो चीजें जो जो आंखों से देखी जाती हैं, जो बोली जाती हैं, जो कानों से सुनी जाती हैं, उन बेहयाइयों से इंसान बचता रहेगा तो फिर वो उसकी इज्जत भी सलामत रहेगी, अदरवाइज किसी दिन जाके जिना भी कर दे। तो फहाशी बेहयाई इसका हुक्म शैतान देता है, और कैसे हुक्म देता है, वो आके आपको ये नहीं कहेगा मैं तुम्हें आज ऑर्डर दे रहा हूं कि तुम ये करो, वसवसे डालेगा, वसवसे डालेगा, कुछ नहीं होता। एक दफा करने से क्या हो जाएगा, एक दफा करने से क्या फर्क पड़ता है, बाद में तौबा कर लेना, कितने बहाने हैं, सभी तो करते हैं, अगर दिल जमीर कहीं छुपा हुआ कहीं मुलामत कर भी दे तो क्या होता है फिर। आज आप देख लें हमारी शादियां देख लें, फहाशी अगर आपने देखनी है तो सबसे ज्यादा आपको वहां पे नजर आ जाएगी, ये आम लोगों की बात हो रही है, वो इनमें दीनदार भी शामिल है, आपको पता चल जाएगा कि बेहयाई क्या होती है, और वो हमारे लिए कुछ नहीं है, उसके बाद फिर हम भी करते हैं, वो तो उसने भी तो की थी ना, तो फिर क्या हो गया, मैं भी कर लेती हूँ, शैतान देखो कैसे पट्टी पढ़ाता है, तो उसने की थी तो तुम्हें करने में क्या मसला है, तुम भी कर लो। आज एक ही जगह पर, एक ही होटल में, एक हॉल में हिंदू की शादी हो रही हो और एक हॉल में मुसलमान की शादी हो रही हो, मैं आपको पूछती हूँ आप खुद मुझे बताएं कोई फर्क पता चलता है दोनों में, कोई फर्क पता चलता है, वही सेम लिबास, वही कानों को फाड़ देने वाला म्यूजिक, वही सब तौर तरीके, कोई फर्क नहीं। आज हम कहाँ खड़े हो गए, आज हमारे लिबास देखें, आज हमारी गुफ्तगू देखें, हमारी बातें देखें, उनमें भी बेहयाई, गालम गलोच जो है ना ये भी बेहयाई है, गालियां देना। आज हमारी जो हम चीजें वॉच करते हैं वो देखें, सब चीजों में फहाशी है, और अपने आप को बचा बचा के चलना यही है शैतान के रास्ते से खुद को हटा लेना, वरना शैतान के रास्ते पे चलेंगे तो किधर पहुंचेंगे, जिधर वो पहुंचा, तो ये तो नहीं है कि आप शैतान के रास्ते पे चल के जन्नत में पहुंच जाएंगे, अल्लाह ताला ने साफ बता दिया, वो बेहयाई का हुक्म देता है, फिर भी हम कहते हैं तो क्या हो गया, सारे ही करते, अगर सारे ही शैतान के रास्ते पे चल पड़ेंगे तो हम भी चल पड़ेंगे। ये शीप मेंटेलिटी ना अब हमें छोड़ देनी चाहिए, शीप मेंटेलिटी, शीप की क्या मेंटेलिटी होती है पता है, एक भेड़ जो होती है वो अगर पहाड़ से कूद जाएगी ना तो जितनी भेड़े हैं वो ये नहीं देखेंगे कि वो नीचे जाके गिरी पड़ी है तो मर गई है, वो क्या कहते हैं, वो गई है तो हमने भी जाना, वो भी जाके गिरती जाती है, गिरती जाती है, अपनी नहीं अकल इस्तेमाल करती, गिरती जाएंगी सारी चाहे मरी पड़ी, उसको तो कहेंगे कितनी बेवकूफ है, आप ऐसा सीन देखें तो क्या कहेंगे ये कितनी पागल है ये, लेकिन हम सब भी उतने ही पागल हैं, क्योंकि हम सब भी यही करते हैं, जब हमने कोई काम करना होता तो हम क्या करते हैं, वो भी तो करता है, वो अगर जहन्नुम में गिर रहा है तो हम भी गिरेंगे, वो फलानी ने भी तो किया तो क्या हो गया। तो ये फहाशी शैतान इस तरह फैलाता है, आज हम उन तरीकों की पैरवी करते हैं जो कि गैर मुस्लिमों के हैं, जो कि उनके, उन्होंने तो शैतान के रास्तों को पकड़ लिया और उनके ऊपर चल रहे हैं, हमें अल्लाह ताला ने बता दिया फिर भी हम उन्हीं तरीकों पे चल रहे हैं। रिलेशनशिप्स में देख लें, आप अपने ड्रामे फिल्में देख लें, ये को देखने के काबिल रह गई ये चीजें, सिवाय फहाशी के उनके अंदर और कुछ नहीं। एक ही टॉपिक है उनके पास, ऐसे नहीं लगता कि शैतान एक एजेंडा लेके खड़ा हो गया और बस वो कहता है कि बस इनके अंदर फहाशी फैलाओ। हर एड में एक खूबसूरत औरत दिखाई जाती है, वो चाहे वो एड किसी ब्लेड का है, चाहे वो सिगरेट का है, चाहे वो किसी गाड़ी का है, उसमें औरत जरूर होगी। क्या है, आप बड़े बड़े पोस्टर्स देख लें जो लगे होते हैं, हर एक में औरत दिखाएंगे। तो फहाशी का आज यानी एक बाजार है जो ऐसा सरगरम है, और शैतान इसके जरिए आ रहा है, जो इंसानों के अखलाक भी बिगाड़ रहा है, उनका दीन ईमान भी जाता रहा है, ये फहाशी की वजह से। नजरों की हिफाजत नहीं रही, इसका हुक्म कुरान में है, क्योंकि अल्लाह को पता है कि जब नजरें उठेंगी तो फिर बुराई के सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे, नजर ही नहीं उठानी। लेकिन आज नजर बचाना मुश्किल हो गया। وَأَن تَقُولُوا اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, और वो क्या हुक्म देता है कि तुम अल्लाह के ऊपर वो बातें करो जो तुम नहीं जानते। और आम ये होता है इवन मुसलमानों में, गैर मुस्लिम तो करते ही हैं, उनको ना अल्लाह का पता, ना कुछ दीन का पता, उसके ऊपर ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो कोई उनको इल्म भी नहीं है। और मुसलमानों का क्या हाल, कितने आराम से आज लोग कह देते नहीं ये तो कुरान में लिखा हुआ है, या कितने आराम से कह देते कहाँ लिखा है जी कुरान में ये, हालांकि वो कुरान में लिखा होता है लेकिन उन्होंने आज तक कुरान पढ़ा ही नहीं, तो उनको क्या पता। और अब कितने धड़ल्ले से कहते कहाँ लिखा है कुरान में जी, तो आपने कुरान को समझा है, कितना समझा है आपने, इंसान ये सवाल पूछे अगला, कितना समझा है, कितना आपने इसमें दिमाग खपाया हुआ है जो आपको पता है। फिर कुरान के जिनको समझ है वो उनकी आयतों को ट्विस्ट करके अपने मनमाने माने लगा के और फिर कहते हैं देखा ये देखो ये तो कुरान में इस तरह है। मा ला तालमून, जो नहीं जानते, पता ही नहीं है, वो अल्लाह के ऊपर बातें बनाते हैं। और कई ऐसे, अल्लाह ताला माफ करे, हदीस जो है वो आज ट्रू हो गई है कि कई ऐसे उलमा होंगे, एक जमाना आएगा ऐसे उलमा होंगे जो जहन्नुम के दरवाजों पे खड़े होंगे और लोगों को जहन्नुम की तरफ बुलाएंगे। आज हमारे सामने ऐसे लोग हैं जो लोगों को इसी तरह करते हैं, मिंबरों पे बैठे हैं और वो ऐसी ऐसी तकरीरें कर रहे हैं, और लोगों का हाल ये है कि जोश के मारे लगता है कि फट पड़ेंगे ये लोग उनकी वाह वाह करने में, और कुछ नहीं देख रहे कि ये जो बात कह रहा है ये कितनी गलत है। बस उनका काम ये है कि इतनी जोर से नारे लगाएं कि दीवारें हिल जाएं, अपना जोश दिखाएंगे और हाथ उठा उठा के उनको शाबाश देंगे, और वो क्या बातें कर रहे हैं, अल्लाह ही माला तालम, जो नहीं तुम जानते। ये शैतान ही करवाता, कभी किसी बुजुर्ग को बढ़ा चढ़ा के बताने के लिए ऐसी बातें करते हैं, कभी किसी किस्म की बातें करते हैं। इसीलिए आपको कहते हैं खुद नॉलेज लो, ताकि आपको कम से कम कोई बात करे तो आपको समझ तो हो कि ये जो बात कर रहा है ये गलत कर रहा है, ये हमें बहका रहा है, ऐसी तो कोई बात नहीं अल्लाह ने कही, लेकिन हम अंधाधुंध पे चल पड़ते। कभी हम, अगर आपको बात सही पता है तो जरूर बताएं, लेकिन अगर आपको किसी बात में जरा भी डाउट है ना कि पता नहीं ये इस तरह से है या नहीं, तो अपनी जुबान कभी ना खोलें, क्योंकि यही शैतान करवाता है। अंतकूल वल्लाह मा ला तालमून, तुम नहीं जानते और तुम अल्लाह के ऊपर वो बातें बनाने लगे, हदीस में तो ये आता है, फलानी जगह तो ये है, हमारे दीन में तो ऐसा है। हमारे दीन में कहाँ ऐसा है, आपको खुद ही सही नॉलेज अगर नहीं है तो आप बैठ के किसी जगह तकरीर शुरू कर देते। तो सिर्फ और सिर्फ वो बात करें जिसका आपको 100% श्योर है कि हाँ ऐसा है, अदरवाइज मत अपनी जुबान खोलें, क्योंकि अदरवाइज आप इस आयत के मुताबिक हो जाएंगे कि आप अल्लाह पे वो बातें लगा रहे हैं जो कि आप नहीं जानते, और ये काम कौन करवा रहा है, शैतान। और आज देखें कितनी कितनी बातें, वो कुफारे मक्का तो क्या कहते थे, वो कहते थे ये जो हम नंगे होके तवाफ करते हैं ना काबा का और तालियां बजाते हैं, ये तो अल्लाह ने ही हमें हुक्म दिया हुआ, वो अल्लाह फहाशी का कोई हुक्म देता है। आगे भी आएगा, आप अगली सूरा में भी पढ़ेंगे यही कि शैतान किस चीज का हुक्म देता है, इसी सूरा में बल्कि अगले पारे में, कि शैतान फहाशी का हुक्म देता है। अल्लाह नहीं फाहिशी का हुक्म देता, ये अल्लाह ताला का नहीं है कि वो बेहयाई की बातें हम लोगों को कहे करने को, या ऐसी ऐसी बातें कि जो खुद ही से अपनी मनगढ़ंत बातें खुद ही से लगा ली मी। वो शैतान, याद रखी, ये तीन काम कराता है, बुराई के, बुराई की कराहत को निकाल के बुराई के काम कराता है, और बुराई में सबसे बड़ी बुराई फहशा, फहाशी। क्योंकि देखें, जब बेहयाई शुरू होती है ना, तो इससे भी बहुत सारे और दरवाजे खुल जाते हैं बुराई के। और फहाशी आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कुरान पाक में, कि जाहिर की भी और बातिन की भी हर तरह की फहाशी को अल्लाह ने हराम करार दे दिया, हराम। और क्या लफ्ज देखना चाहते हैं, हर तरह की। लेकिन प्रॉब्लम आज क्या है ना, कि अगर आप किसी को कहें कि ये बेहयाई है, ये नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो कहते हैं ये किसने आपको कह दिया बेहयाई। आज हमारे मयार ही देखो, शैतान ने कैसा हमें बना दिया कि बुराई बुराई ही नहीं लगती, कहते हैं इसमें क्या हर्ज है, और बुराई भलाई लगने लगी है कि इसके बगैर तो कोई चारा ही नहीं, ये तो जरूरी है, इससे तो सारा फन है, इसमें तो सारा मजा। तो समझ नहीं आती कि कौन ये पीछे है जो ये करा रहा है। आज हमारी बुराई के मयार ही बदल गए, किसी गैर महरम के साथ करीब होना, उसके उसके साथ बातचीत करना, क्या ये फहाशी नहीं है? नहीं, ये तो हमारे भाई हैं। ओ भाई, भाई करते करते फिर आगे कुछ और मसले हो जाते हैं। हस्बैंड के दोस्त उनके दोस्त हैं, वो आपके दोस्त नहीं है। किसी के साथ भी एक्स्ट्रा बातचीत करने की हमें जरूरत ही नहीं, जहां पे जरूरी नहीं है तो हमें क्या जरूरत। हम आगे बढ़े और हम उनके दोस्तों के साथ हम भी दोस्ती करें। जब फहाशी के आपने दरवाजे बंद करने हैं ना, तो ये सारी चीजें फिर ही पर्दा भी आता है, फिर भी सेग्रीगेशन भी आती है कि आप अलग अलग बैठे। अरे जब एक जगह बैठेंगे तो सब एक दूसरे से बात करेंगे, फिर फ्रैंकनेस होगी, फिर क्लोजनेस होगी। और एक वाकया नहीं है ये, बहुत सारे वाकयात हैं जहां पे इस किस्म की होती हैं चीजें। हमारी एक सिस्टर ने ये शेयर किया, और उन्होंने मुझे कहा था कि आप जरूर ये बात शेयर करिएगा, इसलिए मैं उनकी इजाजत से ये शेयर कर रही हूं, कि एक किसी की ये बात उन्हीं की है। उन्होंने बताया कि किसी एक स्कॉलर के साथ उनकी बातचीत होने लगी, फोन पे या जैसे भी, या उनके पास जाती थी, और कहती बढ़ते बढ़ते फिर टेक्स्ट होने लगे, फिर फोन पे बातें होने लगी। और इनके हस्बैंड चूंकि घर पे नहीं होते थे, वो किसी और मुल्क में रहते थे, और ये यहाँ पे बच्चों के साथ अकेली थी, तो बढ़ते बढ़ते ये हाल हो गया कि यानी आपस के अंदर मोहब्बत और फिर वादे वईद और शादी के वादे और ये सब हो गए। और फिर एक दिन उनके हस्बैंड ने उनके टेक्स्ट पकड़ लिए, और उनकी ये आज नौबत आ गई है कि वो बच्चों से भी जुदा हैं, आपस में भी उनका खत्म हो गया रिलेशनशिप, उनकी जिंदगी खत्म हो गई। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि आप लोगों को बताएं कि वो इस चीज को, कि नहीं, ये तो स्कॉलर है, नहीं, ये तो स्कॉलर है, करते करते तो स्कॉलर है, तो वो क्या इंसान नहीं है? जहां पे एक मर्द औरत की इस तरह से प्राइवेट मुलाकातें या प्राइवेट बातें शुरू हो जाएं, वहां पे कोई तीसरा शैतान ही आएगा ना। आज उनका घर ही तबाह हो गया, तलाक हो गई, बच्चे भी उन्होंने ले लिए, आज क्या उनका रह गया। मैं यहाँ क्या आपको इसलिए रियल लाइफ से मिसालें लाके बता रही हूँ कि आप एक फूल्स वर्ल्ड में ना रहें, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और जिस रब ने हमें हुक्म दिया ना, तो वो ज्यादा जानता है, हम नहीं जानते। इन सब चीजों के पीछे हमारी ही भलाई है, अगर हमें पर्दे का हुक्म दिया तो उसमें भी हमारी को भलाई है तो दिया है ना। अल्लाह, कोई शौक नहीं है कि हमें पर्दों में करके कुछ रख उसको कोई फायदा होगा, लेकिन इसमें हमारे लिए फायदा है। जब गैर महरम की नजर उठेगी तो कितने उससे फितने पैदा होते हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आपके ऊपर उठ रही है और आपकी वजह से उसके घर में फितने पैदा हो रहे हैं, तो इसका कसूरवार कौन है, ये बताएं। चाहे आप अबाई इतने टाइट पहन के घर से निकल रही हैं, आप फुल मेकअप करके एक हिजाब लेके जा रही हैं कि उसमें तो हिजाब के अंदर, और आपने अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बना लिया कि शायद आप हिजाब ना लेती तो इतनी अट्रैक्टिव ना लगती जितना कि आपने अब अपने आप को बना लिया, तो कसूरवार कौन है। इसी ने मेरे साथ ये भी शेयर किया था, उन्होंने कहा उसके हस्बैंड उसके ऊपर हाथ उठाते हैं, कह रही सिर्फ इस वजह से कि वो कहते हैं कि तुम वैसी खूबसूरत क्यों नहीं जैसे तुम्हारी वो दोस्त है, तुम तो ऐसी लगती हो, तुम तो ऐसी। जाहिर है उसकी नजरें उस पर उठी तो फिर है ना, और वहां से क्या लेकर आई फिर, फितना। किसी के काम नहीं है कि जब किसी किसी का महरम मौजूद ना हो तो वो उसके घर में आए, किसी का काम नहीं है कि किसी औरत को फोन करे जबकि उसका हस्बैंड घर पे नहीं होता। ये औरत को अल्लाह ने उसके अंदर एक अलार्म सिस्टम रखा है कि जो बजने लगता है अगर कोई अपनी हद से आगे बढ़े। लेकिन फिर औरतों को समझना चाहिए कि यहां पे हमारी हद है, हमने इससे आगे नहीं जाना और किसी को इस हद को क्रॉस नहीं करने देना। और कहीं पे कजन 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 है कजन है, कजन तो कुछ भी नहीं होता, कोई मसला ही नहीं कजन के साथ। उसके बाद फिर वहां पे भी फितने पैदा होते। तो कहां कहां से मैं आपको मिसालें ला के दूं, आप इस माशरे में रहते हैं, आप लोग खुद देखते हैं ना अपने इर्द गिर्द कितने फरिश्ते हैं यहाँ पे जो रहते हैं, खुद आप बताएं। फिर उसके बावजूद हम अपनी आंखें बंद किए रखें। तो हमारा किसी और पे ना कंट्रोल हो, अपने आप पे तो है ना। फिर अपने आप को ऐसी जगहों से बचाएं, ऐसी मजलिसों से बचाएं